نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خود ان لوگوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں کی راہ کی پیروی کا حکم دیا ہے جو اہل ایمان سے پہلے گزرے اور جنہوں نے اللہ تک پہنچنے والا راستہ اپنایا. پچھلے درس میں سلف کی پیروی یا سلف کے منہج کی پیروی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرے. انسان یا تو شان میں گستاخی کرتا ہے یا تو شان میں حد پار کر کے نبی کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے. یہ دونوں بھی غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا احترام سب دل و جان سے اس کو قبول کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو اللہ کا مرتبہ، اللہ کا مقام اللہ کو دے اور رسول کا مقام رسول کو دے. اگر یہ آدمی کرے تو یہ اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور صحیح منحص پر ہے. اگر ایسا نہ کرے تو اس کے منحص میں بلکہ اس کے عقیدے میں بگاڑ. آج اس سے آگے بھی بڑھیں گے اور ایک نقطہ جو پچھلے درس میں شروع کیا تھا اسی سے آگے بڑھیں گے. آخری چیز اس میں یہ ہے کہ لئے سمی منحج سلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد فيكم وعليكم بالامر العقيم. دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منحج نہیں. سلف کا شعار تو یہ ہے اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے ہی کفایت کر دی گئی ہے اور تم پرانے طریقے ہی پر قائم رہو. یعنی سلف یہ دعوت دیتے تھے، سلف لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو اور دین کے معاملات میں اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد مت کرو، بدعتیں مت کرو، یعنی دین میں کچھ نیا مت نکالو. بدعت کے معنی دین میں کچھ نیا نکالنا، دین میں اضافے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کوئی کام دینی اعتبار سے کرتا ہے اور اپنی عقل سے اس کو اچھا مان کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کے لیے. اور سلف کہتے تھے کہ فقط کفی، تو جتنا دیا گیا ہے تمہاری بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو دیا ہے وہ ہماری نجات کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے. ہم کو اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اضافہ دین میں کیوں کرے گے؟ جب دین کامل ہے تو اضافہ کیوں کرے؟ فقط کفی، تمہارے لیے اس دین میں کفایت کر دی گئی ہے، جتنا بتایا گیا ہے اتنا تم کرو گے، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے. جب اتنا کافی ہے تو اپنی طرف سے ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے सुन्नत में किफायत रखी है, इतना ही बता दिया, बस इससे ज्यादा मत तो हम क्यों करें। और वअलैकुम बिल अम्र अकीम, सलफ जिस चीज की दावत देते थे उसमें एक ये भी चीज थी कि तुम पिछले तरीके पर कायम रहो। पिछला तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा जिस पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर थे, वो तरीका पुराना है, उस पर कायम। लिहाजा सलफ के यहाँ बिदअत के लिए कोई जगह नहीं, सलफ के मनहज में बिदअत बुरी है। पिछले दर्स में हमने बिदअत की तारीफ देखी थी। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ان البدعات في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله। दीन में बिदअत क्या है? हर ऐसी चीज जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं रखा, मशरू नहीं किया, वो बिदअत है। वह ما لم يأمر به, बिदअत वो चीज है जिसका हुक्म नहीं दिया ना अल्लाह ने ना रसूल ने। न ताकीदी तौर पर हुक्म दिया न तरकीबी तौर पर हुक्म दिया। हुक्म दो तरह का होता है, एक ताकीदी हुक्म है जिससे चीज लाजिम हो जाती है, जैसे नमाज का हुक्म है पांच वक्त की, वो लाजिम है, लेकिन तहज्जुद का भी हुक्म है लेकिन वो लाजिम नहीं। तो न तरकीब दी हो न हुक्म दिया हो, जिस चीज का हुक्म दिया उसका करना जरूरी है, लाजिम है, जिस चीज की तरगीब दी उसके करने में सवाब है और वो अच्छा है, लेकिन जब किसी चीज की न तरगीब दी है न हुक्म दिया है तो दीन कैसे बन सकता है? लिहाजा दीन में अपनी तरफ से इजाफा करना जायज नहीं और हर बिदअत गुमराही है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबात में कहते थे अम्मा बाद फइन खैर अलहदीथ किताबुल्लाह, अम्मा बाद खुतबे की शुरुआत में कहते हैं, जैसे कहने वाला कहता है बहरहाल आप सुनो, असल बात यह है लिहाजा सुनो, तो अम्मा बाद गुफ्तगू की शुरुआत में कहा जाता है जब असल बात शुरू होती है। एक इंसान जब बात करता है तो एक मुकदमे के तौर पर कुछ कहता है फिर असल बात शुरू। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अम्मा बाद फइन खैर अलहदीथ किताबुल्लाह, यकीनन सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। बातें दुनिया में बहुत है लेकिन इन तमाम बातों में, इन सारे कलामों में सबसे बेहतरीन बात अगर कोई है तो अल्लाह की बात है जो अल्लाह की किताब है, यानी सारी बातों में सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की है। वो खैरुल हुदा हुदा मुहम्मद, बाद रिवायतों में हदी का लफ्ज आया है और सही मुस्लिम की रिवायत में हुदा का लफ्ज है। वो खैरुल हुदा हुदा मुहम्मद, सबसे बेहतरीन हिदायत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। हुदा का मतलब होता है गाइडेंस, रहबरी, सबसे बेहतरीन रहबरी अगर है तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी। वशरुल उमूर मुहदसातुहा, और सारे मामलात में सबसे ज्यादा शर वाले मामलात अगर कोई हैं तो वो है जो बिदअत वाले हैं। सारी चीजों में सबसे बदतरीन चीज अगर कोई है तो वो बिदअत है, यानी नई चीज। तो सारे मामलात में, सारी चीजों में सबसे बदतरीन चीजें, शर वाली चीजें, दीन में नई चीजें, मुहदसातुहा। मुहदस का मतलब होता है नया, जिसको घड़ा गया। वकुल्लु बिदअतिन दलाल, और हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही। इस हदीस से एक बहुत अहम बात मालूम हुई, वो ये कि हर बिदअत गुमराही। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब वादे में आपने नंबर एक पर कुरान का तज़किरा किया, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब कुरान है। नंबर दो सबसे बेहतरीन रहबरी, क्योंकि कुरान को समझाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे है। اور اس کے بعد ہی آپ کو ہدایت ملے گی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اس نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم کو ہدایت ملے گی. تو معلوم ہوا کہ ہدایت نبی کی ماننے میں. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد, سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے, یعنی سنت, یعنی اس بات کہیں حدیث, قرآن اور حدیث. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بدترین چیزیں کیا ہیں, اب سب سے اچھی چیزیں بتائیں. خیر, خیر اللہ کی کتاب خیر والی ہے, نبی کی تعلیمات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری خیر والی ہے. لیکن شر کیا ہے؟ شر شراب پینا, جوا کھیلنا, چوری کرنا, زنا کرنا, صرف یہ شر نہیں ہے. یہ تو شر ایسا ہے جس کو مسلمان بھی مانتا ہے اور غیر مسلم بھی مانتا ہے, لیکن دین کے نام پر شر کیا ہے؟ دین کے نام پر شر یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ شر الامور محدثاتها, چیزوں میں سب سے زیادہ شر والی چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی جائے. اور وکل بدعت ضلال, اور ہر بدعت گمراہی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں کچھ نیا نکالنا شر ہے, چاہے وہ کسی کو اچھا لگے, اور دین میں بدعت نکالنا گمراہی ہے, چاہے انسان کی نیت ہدایت کی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا. نمبر ایک, دو, آپ نے کہا وہ کل بدعت ضلال, ہر بدعت گمراہی, ہر بدعت گمراہی. دین میں بدعت چاہے وہ کوئی بھی ہو گمراہی, بدعت ہدایت نہیں ہوتی. ٹھیک, یہ بات سمجھنے صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود کہتے تھے اتبعو, اتبعو اتباع کرو. اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا, فالو کرنا, پیروی کرنا. ولا تبتدعو, بدعتیں مت کرو, اتباع کرو, بدعتیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتو, تمہارے لیے کفایت کر دی گئی, تمہارے لیے کافی, یعنی پہلے جو آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں تمہارے لیے کافی ہے, نیا نکالنے کی ضرورت نہیں. تم کیا کرو, جتنا سنت کا علم مل چکا ہے اس کی پیروی کرو, اپنی طرف سے اضافہ دین میں مت کرو, جو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. تو معلوم ہوا کہ سنت میں کفایت اور بدعت میں ضلالت, سنت میں کفایت سنت کافی ہے اور بدعت گمراہی ہے, حرارت ہے. لہذا سلف میں آپ دیکھیں صحابی عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا سنت میں تمہارے لیے کافی تو اس کی اتباع کرو, اور ولا تبتدعوا, اور بدعتیں ایجاد مت کرو, دین میں بدعت مت نکالو. امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے, فرماتے ہیں انا نقتدی ولا نبتدی, ہم اقتداء کرتے ہیں, ابتداء نہیں کرتے ہیں, یعنی جو ہم سے پہلے ہمارے اسلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صاحب جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں. اور ان میں سر فہرست کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ان کے لیے کہ ہم سلف کی اقتداء کرتے ہیں, اقتداء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلنا, اس کی خیر والی خوبیاں جو اس کی ہیں, اس کے اوصاف ہیں, ان کو اپنا, ان کے پیچھے چلنا, ان کے ماتحت ہونا, ان کے تابع ہونا. انا نقتدی, ہم ابتدا کرتے ہیں, ہم ابتدا نہیں کرتے ہیں. جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے جس کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رائج کیا ہے ہم اس پر چلتے ہیں, ان کی اوصاف اپناتے ہیں, ان کا رائج کیا ہوا طریقہ اپناتے ہیں. हम इब्तिदा नहीं करते, हम नया गुल नहीं निकालते, हम शुरुआत नहीं करते, जो है उसको फॉलो करते हैं। और वनतबउ वला नबतबउ, वनतबउ हम इत्तिबा करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा जो हमसे पहले जिस चीज पर कायम थे हम उसकी इत्तिबा करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करते हैं। वला नबतबउ और हम बिदाते नहीं करते। तो पहली चीज क्या है, इब्तिदा करते हैं, नया शुरुआत कुछ करते नहीं, पहले नहीं कहा नया तो निकाल। दो, हम इत्तिबा करते हैं सुन्नत की, हम इब्तिदा नहीं करते, बिदात नहीं निकालते। वलन नज़िल मा तमस्कना बिल अकब, कहते हैं हम कभी गुमराह नहीं होंगे जब तक कि हम अतर पर कायम हैं। अतर कहते हैं जो दलील मनकूल हो। अतर का मतलब लफ्जी तौर पर अगर तर्जुमा आप देखें, अतर का मतलब होता है जब कोई चलता है पीछे अपने कदमों के निशान छोड़ता, जो चलता है पीछे कदमों के रेत में निशान छोड़ता है उसको अतर कहते हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सलफ से, इनके असलाब अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खास तौर से, क्योंकि इनकी बहुत जल्दी वफात हो गई। तो कहते हैं कि हम जब तक कि हम आसार की इत्तिबा करते रहेंगे हम गुमराह नहीं, यानी जब तक के जो दलील हम तक नकल हुई है हम उसकी पैरवी करेंगे गुमराह नहीं। मालूम हुआ कि दलील की पैरवी करना गुमराही से बचाता है, दलील की पैरवी करना इंसान को गुमराही से बचाता है। और ख्वाहिशा और अकल और समाज और मेजॉरिटी, इस तरह से आदमी इनको दलील बना ले, ये दलील नहीं। दलील कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इत्तिबा की जाती है और सलफ जिनकी इक्तिदा की जाती है। तो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हमारे लिए क्या है? दलील। आप सहाबा का इस चीज पर इत्तिफाक हो हुज्जत। लिहाजा ये इब्ने मसूद का कौल हमने देखा। इसी तरह से ये कौल उन्हीं का है, फरमाते हैं इन्नकुम अल्यौम अला फितर, आज आज तुम फितरत पर हो। फितरत उस दीन को कहते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, और फितरत उस दीन को कहते हैं जिस पर अंबिया थे, नबी के लाए हुए दीन को फितरत कहा जाता है। इन्नकुम अल्यौम अला फितर, इसे अल्लाह फरमा फितरत अल्लाह लजी फतर अन्नास अलैहा, उस दीन पर आ जाओ। अकीम वजह का लिद्दीन हनीफा, अपने चेहरे को दीन हनीफ के लिए कायम कर दो, उस तरफ मुतवज्जा करो। ये वो दीन है फितरत अल्लाह लजी फतर अन्नास अलैहा, वो फितरत जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, सारे लोगों को पैदा किया, नबी के लाए हुए दीन को फितरत कहते हैं। कि अंबिया फितरत से हट के नया दीन नहीं लाते, वही दीन लाते हैं जिसकी जिसकी तलब इंसान की फितरत में है, जो इंसान की फितरत के मुताबिक। तो कहा आज तुम फितरत पर हो, लेकिन आगे क्या होने वाला है? वो इन्नकुम सतुहदिथून व युहदथु लकुम, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम बिदातें करोगे। ये सारी उम्मत से खिताब है, किसी खास तबके या फर्द से नहीं, उम्मत से कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा तुम बिदातें घड़ने लगोगे, या तुम्हारे तुम में से बाहर लोग बिदातें घड़ेंगे। व युहदथु लकुम, और तुम्हारे सामने बिदातें, तुम्हारे लिए बिदातें घड़ी जाए, तुम बिदातें घड़ोगे, दूसरे बिदातें घड़ के तुम्हारे सामने लाएंगे। फइदा रायतुम मुहदतिन, तो ताकीद कर रहे हैं, फइदा रायतुम मुहदतिन, जब तुम कोई नई चीज दीन में देखो, लोगों में समाज में जब कोई बिदात देखो, फअलैकुम बिलहदी अव्वल, तो तुम्हारे लिए पुराना तरीका भी सही है। बात के दौर में क्या होगा, लोग बिदाते घड़ेंगे, तुम भी बिदातों में घड़ने में लग जाओगे, लोग भी बिदाते घड़ेंगे। याद रखो उस दौर नेक लोगों से, बाकी समझ रखने वालों से किताब करके बैठे। देखो जब ऐसा होने लगे, जब समाज बिदाते घड़ने लगे और मुसलमान उस पर अमल करने लगे, तो कहा फइदा अईतुम मुहदथतिन फअलैकुम बिलहदी लहु। जब तुम बिदाते देखो तो तुम्हारे लिए नजात का रास्ता क्या है? अल-हदी। हदी कहते हैं उस्वा, हदी कहते हैं तरीके, हदी कहते हैं रास्ते। पहले को बिल-हदी अव्वल, जो पहला रास्ता है, पहला तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, जिस पर तुम्हारी वो तरीका जरूरी है। मालूम हुआ यदि मुसलमानों में बिदात आम हो, मुसलमानों को चाहिए कि सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करें। इमाम अद-दारमी ने इसको रिवायत किया है और इब्न हजर ने फतुल बारी में इसको सही कहा है। इब्न आम कहते हैं बिदात के बारे में, इब्न सीरीन रहमतुल्लाही का क्या बारे आई है, इब्न आम कहते हैं कान मुहम्मद, मुहम्मद इब्न सीरीन, قال محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء। ابن عون कहते हैं कि मोहम्मद बिन सीरीन की राय थी, मोहम्मद बिन सीरीन के नजदीक ये बात मुसल्लम थी कि अन असरा الناس अन असलाह الناس रिद्दतन अहल अहवा, यानी लोगों में दीन से फिरने वाले, जल्दी फिरने वाले लोग वो होते हैं जो बिदात में मुब्तला हो। जो लोग बिदात में मुब्तला हो जाते हैं वो लोग दीन से फिरना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी उनकी होती है। और आप यकीन माने ये 100% दुरुस्त। इंसान चाहे इस दौर में हो, पिछले दौर में हो, आदमी एक फलसफा कायम कर लेता है, एक अपने तौर पर उसूल बना लेता है। जाहिर बात है इस उसूल के लिए कुरान और सुन्नत की कोई दलील नहीं। अब बना लिया, अब उस उसूल की बुनियाद पर अब वो सारी चीजों को परखना शुरू करता है। बाद अवकात उसके सामने सही बात भी आती है, हक बात भी आती है, लेकिन वो हक बात उसके उसूल से टकराती है, उस हक बात का भी इनकार कर देता है और इस्लाम से खारिज हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि वह अपना एक उसूल बना ले, फिर उस उसूल के खिलाफ दलीलें आने लगती हैं तो फ्रस्ट्रेशन में आके सारा दीन ही छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी उसूल बना ले, इस साइंस और अक्ल के खिलाफ कोई चीज अगर सामने आती है तो नहीं मानना चाहिए। हालांकि साइंस कोई पैमाना नहीं, साइंस जो है बदलता रहता है दौर के अनुसार से, नई नई तरक्कियां सामने आती रहती, नई तहकीकात सामने आती है। एक थ्योरी आज चल रही है ठीक है, लोग उसी कुर्सी पे बैठे हैं, कल को कुर्सी हटा के दूसरी कुर्सी आती है, एक तहकीक चली जाती है दूसरी तहकीक आती है, साइंस बदलता रहता है। अगर इंसान की अपनी अपन तरक्की करती है, आगे उस बारे में भी आएगा। अब इंसान एक उसूल बना लिया, अब इस उसूल पर उसके सामने कोई हदीस आती है, आदमी क्या करता है, हदीस नबी की बात नहीं मानूंगा ऐसा नहीं होता, क्या कहता है ये हदीस नहीं हो सकती। क्यों? हमारे नबी साइंस के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे कायनात को अल्लाह ने बनाया, साइंस को अल्लाह ने पैदा किया, हमारे नबी अल्लाह से हटके थोड़ी बोलेंगे, तो ये हदीस नबी की नहीं हो सकती। हदीसों को छोड़ने लगता है, क्यों? साइंस शरीफ की वजह से हदीस शरीफ का दर्जा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फिर कुरान की आयत भी इस हिसाब में कोई आती है जो साइंस की किसी बात के खिलाफ दिख रही है। अब हदीस तो ठीक है, सही और ज़ईफ है, कुरान में अब किसी ऐसी मामले में अगर कुरान की आयत के सामने आ जाए, क्योंकि आदमी ने उसूल बना लिया है, आदमी बजाय अपने उसूल के बदलने के फिर कुरान के बारे में भी शक में पड़ जाता है या उसकी ऐसी ताबीज करता है जो उसमें नहीं है। और सही लोग ऐसा कि माजी में जितने बिदाती फिरते हैं उनमें आप यही दिखाई देगा कि अपने आप को नहीं बदला, कुरान को या सुन्नत को बदलने की कोशिश की, लफ्जन बदल नहीं पाए उसके माना उसको बदल दिया, अल्फाज को कुरान की नहीं बदल सकते हैं, क्या ये वो मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कौन सा तुम मैं समझा, अल्लाह ने बताया नहीं, रसूल ने बताया नहीं, लेकिन मेरी समझ में जो मतलब आया कुरान की आयत का ये मतलब वो या कि कुरान के अल्फाज को बदलने की बजाय सुनाना। और कभी ऐसा होता है कि आपकी सिरे से फिर इस्लाम ही में शक करने लग जाता है, क्यों इतना ज्यादा प्रोपगेट किया किसी चीज को। मिसाल के तौर पर देखिए, एक आदमी गाय के पेशाब के बारे में उसका बिल्कुल जंग लोगों से करता है, गैर मुस्लिमों से, अरे क्या तुम लोग पेशाब डालते हो तुम्हारे इसके अंदर उसके अंदर, लड़ना शुरू किया उसके अंदर, अपनी फौकियत बताई, गैर मुस्लिम ला के हदीस पेश किया, अच्छा ठीक है पेशाब जानवर का नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, तुम्हारी बुखारी में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का पेशाब और ऊंट का दूध दोनों को मिक्स करके कुछ लोग जो बीमार थे बीमारी के इलाज के लिए पीने के लिए कहा, आप क्या बोलोगे, अब ये धर्म संकट में आ गया, अब क्या हो गया, अब वो चैंपियन था गाय के पेशाब को रद्द करने का, अब चूंकि उसकी जिंदगी उसी पे परवान चढ़ी है और वो खुद का टूटना पसंद नहीं करता, हदीस सामने आती है लेवल वन सोचना चाहिए आदमी ने मैं गलत तो नहीं, लेकिन आदमी जब इस तरह से किसी मफरूजे से किसी उसूल से किसी अपनी आइडियोलॉजी से एकदम चिमटा हुआ होता है, उसकी जिंदगी में एकदम वो फर्म होती है, तो सामने जब हदीस भी आती है तो क्या करता है, हदीस सही है गलत, तो पहला शक इस पे होना चाहिए अपनी सोच में, लेकिन पहला शक किस पे करता है, बल्कि बात और बात हदीस के माने से इंकार करता है, फिर इमाम बुखारी के बारे में इंसान ही तो गलती हो सकती है, फिर सारे मुहदीसीन के बारे में बोलना शुरू करता है वो भी इंसान थे, फिर सीधे से हदीस के बारे में शक करने लगता है, कुरान का भी है कि नहीं अपने लिए, हदीस में क्या जाने का, कुरान में है क्या नहीं है ना, फिर ये हदीस का मामला ही गड़बड़ है, पूरी हदीसों का इंकार मुर्तद है, समझ में आया। एक आदमी अपने तौर पर कोई फिलॉसफी कोई आइडियोलॉजी खड़ लेता है और उसके बाद में कि जब वाकई हक भी उसके सामने आता है तो नहीं मानता, वाकई हक भी उसके सामने आता नहीं मानता, तो इसके लिए याद रखें कि पहले दीन सीखें, वाकई दीन मालूम करें, उसके बाद उसके मुताबिक अपने आप को बनाएं, ऐसा न करें कि अपने तौर पर एक फलसफा बना ले और फिर उसके बाद उसको प्रचार भी उसका शुरू कर दे और फिर उसके खिलाफ दलील कुरान और सुन्नत की आ जाए तो फिर पलटना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं कैसे छोटा हो सकता हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है तो मैं भी तो कुछ बड़ा हूं, सबसे बड़ा अल्लाह है कि मैं भी बड़ा हूं, ये शैतान है। आदमी क्या करता है, अपनी बड़ाई के टूटने को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो आदमी अपनी बड़ाई के टूटने को बर्दाश्त न कर पाए अभी तक इसकी तौहीद सही नहीं हुई, अपनी बड़ाई को टूटना, अपना रिजेक्शन, अपना छोटा होना, अपना गलत साबित होना, इसको बर्दाश्त नहीं होता, क्यों भाई नहीं हो सकता, गलत हो सकता है, मेरी बात मेरी राय मेरी मेरा इस्तिदलाल मेरा इस्तिंबात मेरी सोच, मेरा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान कौन है, इसकी सोच इसकी बात क्या है, वही है अल्लाह, गलत क्यों हो सकता। आदमी बाज औकात अपनी सोच को इतना ज्यादा परफेक्ट मानने लगता है कि कभी उसके टूटने को बर्दाश्त नहीं करता, क्यों, इसलिए कि अपनी बात के गलत साबित होने को अपनी जात के गलत साबित होने के बराबर समझता है, हालांकि दोनों सेम नहीं है। एक आदमी अच्छा होकर भी उसकी बात गलत हो सकती है, एक आदमी सही है, आदमी सही है लेकिन बात उसकी गलत नहीं हो सकता, एक डॉक्टर का ऑपरेशन फेल नहीं हो सकता, डॉक्टर ही गलत हो गया उससे, लेकिन आदमी समझता है मेरी बात गलत हो गई का मतलब मैं गलत साबित हो जाऊंगा, इसलिए कभी मान सकती है। और फिर उसके सामने आप ट्रक भर के भी दलील लाओगे मानता हूं, क्यों, मैं गलत साबित हो जाऊ, ये मुसीबत की जड़ है। लिहाजा अहले बिदात, बिदात वाले, बिदात आतिका से मैं समझता हूं ये अच्छा है, बिदात आतिका से है ठीक है, वे कुरान हदीस में नहीं है, लेकिन बारह कोई रवल का जुलूस मनाएंगे तो गलत क्या है, कुंडे मनाएंगे तो गलत क्या है, फाते देंगे तो गलत क्या है, कुरान ही तो है, कुरान खाली करेंगे गलत क्या है, फला चीज करेंगे गलत क्या है, बुरा क्या है। आदमी अपने तौर पर एक चीज को अच्छा करार देता है और वो दीन में शामिल करता है, उसमें उसकी अपनी शख्सियत का दखल, जब दलीलें उसके सामने उससे टकराने लगती हैं, अपनी शख्सियत का टूटना और बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दलीलों का इनकार करना शुरू कर देता है, कहते हैं अन असरा ना सिरदत आहुगा हुआ, कि जो 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 आदमी बिदाती होता है उसका मुर्तद होना बहुत मुमकिन है, बाद होता उसको भी मालूम नहीं है, सकते एक तजुर्बा है, कितने लोग आप उसके सामने बताओ अरे आप ये कर रहे ना हदीस में ऐसा है, ऐसा नहीं, बात पैदा करने के गलत है, किसका इनकार किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि जो कर रहा है वो नबी का दीन समझ के कर रहा है, अब नबी की बात मानने को तैयार नहीं, क्यों, इसलिए कि उंगली के कर रही है, उसको मजा आता है, उसको पसंद है, उसको सही लगता है। तो बस औकात और अक्सर औकात होता ही है कि हम दीन के नाम पे धोखे में आ जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को दीन का बदल मान के उस पर चलने लगते हैं। बात होता ये होता है कि दीन की बात तो मेरी अकल के हिसाब से वो सही है, तो नहीं नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ करके या तो उसको रद्द कर दूंगा, हदीस को ज़ईफ मान, अगर मेरे हिसाब से नहीं तो हदीस को ज़ईफ कर दूंगा, या अगर ज़ईफ नहीं कर सका, बहुत सही है सनद एकदम कुछ मिल रहा है उसके अंदर, तो उसका मतलब बदल दूंगा, नहीं समझा उसका मतलब उसका ऐसा है तो वो मतलब दूंगा जो मेरी अकल के मुताबिक, जो मेरे पुराने प्रिंसिपल से टकराता ना, जो मेरी बिल्डिंग को बुलडोजर करता हो, उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लैट उसको दे दूंगा, मेरी बिल्डिंग तोड़ूंगा नहीं, उसको ऐसा बना दूंगा, एडजस्ट करूंगा उसको, अपने आप को एडजस्ट करने की बजाय आदमी दीन को एडजस्ट करता है, यही मुसीबत है सारे जमाने का। देखिए जितने भी अहले बिदात हैं, जो मैंने भी बात कहा, जितने भी अहले बिदात हैं उन सब का एक मर्ज है, वो बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, बहुत सोच के लिखा हुआ है, आदमी खुद नहीं बदलता है, और ये खुद की बीमारी है, जो की बीमारी क्या थी, जब नबी आते उन्होंने अपने हिसाब से ख्वाहिशात की बुनियाद पर रास्ता अपनाया, नबी ख्वाहिश से हट के आते तो नबियों के कत्ल के लिए तैयार हो जाते और अल्लाह की किताब को बदल देते, तो ख्वाहिशात की पैरवी तहरीम और इर्तिदाद तक ले जाती है, ख्वाहिशात की पैरवी तहरीम तक ले जाती है या इनकार तक ले जाती है, दोनों, अल्लाह की किताब में तहरीम कर दी, ईसा अलैहि सलाम आए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ दावत लेकर आए, इनकार कर, ये मामला उनका रहा, तो कहते हैं बहुत सोच के कहा किसी ने कि अन्न असरा الناس ردتن اهل الاهواء, लोगों में मुर्तद होने में सबसे ज्यादा स्पीड उनकी होती है जो बिदाती होती है, इसका अगर मॉडर्न ट्रांसलेशन आप करेंगे तो ऐसा इन लोगों में सबसे ज्यादा इर्तिदाद की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ने वाले वो होते हैं जो बिदाती जहन के होते हैं। बिदाती जहन किसको कहते हैं? जो दीन में अपनी फिलॉसफी को लाने में कोई आपत्ति नहीं मानता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मानता, उसमें सो कोई एतराज नहीं कर सकते, क्या है भी अच्छा है तो कर सकते। ये जिसका जहन होता है वो आदमी मुर्तद होने के अंदर क्यों के बाद और बाद कुफरिया दावत भी उसके सामने आती है और इसको अगर पसंद आ जाए तो भी मान आज निकाह में मुसलमानों को देखो, आप देखो दरगाहों के तालुक से जितनी रस्में हैं दरगाहों की उसमें से कितनी सारी चीजें वो हैं जो बुतों के साथ, क्यों भाई बुतों के तालुक से नारियल फोड़ना मक्का में नारियल फोड़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मदीना, बताइए कौन सी किस कौम का है? मुसलमानों का है नहीं, बुतों में फोड़ा जाता है मुसलमान, ये लंबा हो जाएगा कर, लेकिन समझ सुन लीजिए इसको कि क्यों आपको याद होगा बेटा कि मुर्तद कैसे हो जाएगा। ठीक, बुतों के आगे नारियल फोड़ा जाता है दरगाहों में होता कि नहीं? बुतों के ऊपर जो कपड़े होते हैं डाले जाते हैं उनका नीलामी होती है दरगाह के ताल्लुक से, आप देखिए कितनी चीजें इस तरह से उसका उसको लोग लेते हैं और उसके बदले कुछ देते हैं। बुतों के ऊपर चढ़ावे बनाए जाते हैं, उनके सामने कुछ रखा जाता है और उसको तकसीम किया जाता है, दरगाह के कमरों में भी होता है तिरुकुल दरगाह में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? इस्लाम में कहीं तिरुकुल है? क्यों आया आप सोचिए कहां से आए? हमको कुछ बुरा भी बोल रहे हैं उनका तरीका है वही वो जाने, हमारा इस्लाम हमारे लिए हमारा तरीका है, वो हमारा तरीका अपनाते हैं नहीं, ये क्यों अपना लो वो गोश्त खाते हैं नहीं, नहीं हमारा नहीं चलता, वो अपने तरीके पर चल रहे हैं, ये उनका तेरे को लेगा धर्मों में आपको बड़ा लगेगा। उसने नाम खाली बदल दिया, क्या रखा? शीरी में कितना मुर्दो घर में भी नहीं बोलता, चाय में जरा शीरिन डाल शीरिन यानी क्या? मिठास, मीठा। कितने लोगों को उसका मतलब नहीं मालूम, लेकिन शीरिनी का मतलब शीरनी चिमनी बोल चुका शीरनी सफेद रंग का है, उसके लोग का है मुसलमान सारा ना जतरा उर्स है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का उर्स मनाते थे, हजरते खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र का उर्स था, हजरते हमजा का उर्स था नहीं, ये उर्स उनके यहाँ भी होता है, वो लोग भी उर्स मना जतरा सालाना एक मरतबा होता है, नहीं भी देवता वहां पर उनके यहाँ पुजारी होगा यहाँ मुजाविर सारी रस्में वहां पर भी म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और वाली यहाँ पे का अपना म्यूजिक का प्रोग्राम होता है वहां पर सब जमा होते हैं वहां गाते बजाते यहाँ ये करते कितनी मुशाबहत है ये गैर मुस्लिमों के मुशरिकीन का तौर तरीका बिदात की वजह से देखिए हो रहा है सज्जा करने से लेके सब आप देखिए। तो ये इब्न सीरीन कहते हैं कि अहल बिदात इर्तिदाद की तरफ तेजी से दौड़ते हैं, ये बहुत सब बात है, इससे मालूम होता है बिदात कुफ्र और शिर्क का दरवाजा खोलती है, बिदात को मामूली नहीं समझना चाहिए बिदात, क्योंकि इंसान के जहन का नया दरवाजा खोलती है और वो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसी सहाबा क्या बोलते थे वअलैकुम बिल अम्र अकीम वअलैकुम बिल अम्र अव्वल वअलैकुम बिल हदी अव्वल, पिछला तरीका उस पे कायम नया कुछ नहीं निकालो मत, क्योंकि नए में कुफर की आय पर आपने खिड़की खोल दी हवा के लिए उसमें से मच्छर नहीं आएंगे डेंगू आपको नुकसान हो सकता है, आपने खिड़की अच्छे के लिए खोल जी जी हवा आ रही थी लेकिन उसमें से क्या आ सकता है सांप भी आ सकता है बिच्छू भी आ सकता है उसमें से बीमारी के मच्छर भी आ सकते हैं, लिहाजा एक आदमी अपने अंदर से खिड़की खोल देता है दिन में, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए, लेकिन उसमें से हलाकतें भी आती है, और कौन सी हलाकत आ सकती है? लिहाजा बिदात से बचना चाहिए, लिहाजा बिदात से खास तौर से बचना चाहिए। सुफयान अत्तौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलबिदात अहब्ब इला इब्लीस, अलबिदात अहब्ब इला इब्लीस मिन अलमासी। बिदात इब्लीस को अल्लाह की नाफरमानी से ज्यादा पसंद है। मासी किसको कहते हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया आदमी न माने या तोड़ दे उसको। मासीयत अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, ये इब्लीस को अपनी तरफ से दीन बना के अमल करना ये ज्यादा पसंद है मासी। البدعات احب الى ابلیس من المعصیه، بدعات ابلیس کو نافرمانی سے زیادہ پسند ہے، کیوں؟ المعصیه یطاب منها والبدعات لا یطاب منها، وجہ اس کی ہے کہ گناہ سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، شراب پی لیا اس نے یا کوئی حکم اللہ کا توڑا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا یا اللہ کا حکم توڑا، उसको एहसास होता है। लेकिन बिदात चूंकि वो अच्छा काम समझ के करता है, उससे तौबा करने की तौफीक उसको नहीं मिलती है। जिस चीज को आप सवाब के लिए कर रहे हैं उसके ऊपर तौबा करेंगे आप? कहता है गलती हो गई, माफ करना, मैंने नमाज पढ़ लिया, कोई करता है ऐसा? नहीं, नमाज देखी। तो जिस चीज को आदमी नेकी मानता है उससे कैसे तौबा करेगा? बिदात को आदमी दीन में एक भला काम समझ के करता है, अच्छा है, लिहाजा उस अच्छे को आदमी गुनाह नहीं समझता, और गुनाह नहीं समझता उसे तौबा नहीं। लिहाजा एक तो ये कि इंसान गुनाह कर रहा है, दो उससे तौबा भी नहीं कर रहा है, ऐसा काम करवाओ इब्लीस के सामने दो ऑप्शन। एक तो ऐसा काम करवाओ जिसको ये बुरा मानता है और आज किया जज्बे में आके कल तौबा कर लेगा, या फिर ऐसा काम कराओ कि जिसको ये बुरा न माने और कल को तौबा भी न करे, बल्कि आज जितना किया कल उससे और ज्यादा। तो दोनों में ज्यादा डेंजर ऑप्शन कौन सा है? बिदात। लिहाजा इब्लीस क्या करता है? दुनियादार लोगों को हराम कामों में जो जिस्मानी लज्जत वाली चीजें होती हैं उनमें डालता है, उनका मैदान उधर ज्यादा होता है, नाच गाने शराब हाँ जुआ और बेहजारी और इस तरह की चीज। दुनियादार बनते तो उधर उधर तुम उधर जाओ, तुम्हारा मैदान उधर है। दीनदार बनते को कहाँ डालता? भाई हम शराब नहीं पीते, हम ये नहीं करते, होंगे अच्छी बात। तुमको हम कहाँ डालेंगे? बिदात में। दीन के नाम पे वो करो जो दीन नहीं, तुम कुछ ऐसे हालात करिए। लिहाजा अक्सर दीनदार तबका दीन में अपनी अकल से कुछ इजाफा करके हालात अब वहां पे क्या होता है? जो आदमी दुनियादार है, शराब पिया, जुआ खेला, जुमा को मस्जिद में आया, जुमा टू जुमा आता है वो, ठीक है, वीकली अटेंडेंस आया, अब इमाम साहब ने एकदम जोरदार खुतबा दिया, आंख से आंसू निकले, जुमा की नमाज पढ़ा, अल्लाह मैंने इस हफ्ते में जो भी गलती किया माफ कर दे, क्लियर हो गया ना सब। अब वो इतने बड़े बड़े पाप करके भी क्या हो गया? साफ। लेकिन ये जो दीनदार लेकिन बिदात में मुबतला है, जुमा के लिए सोच रहा कि जुमा को तो और करूंगा, क्यों? इसलिए कि उसको गलत नहीं समझता है, कि ज्यादा उसके लिए काम की चीज है इब्लीस कि ऐसा गुनाह कराओ जिसको ये गुनाह ही न समझे, तौबा भी न करे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके उसको गुनाह पे लगाता हूं, फिर आकर अल्लाह के पास तौबा करता है, सब खत्म, सब क्लीन। ऐसा गुनाह कराओ कि वो उसको उससे तौबा ना करे। तौबा कब नहीं करेगा? जब उसको गुनाह नहीं समझे। ऐसा कौन सा गुनाह है? बिदात। दीन के नाम पे अपनी तरफ से इजाफा, जब दीन के नाम पे होगा तो बुरा कैसे? इसीलिए कहते हैं कि सलफ के अकवाल कितने होता है, कहते हैं अल बिदात अहब इला इब्लीस मिन अल मासिया, गुनाह से ज्यादा عام گناہوں سے نہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی سے زیادہ ابلیس کو بدعت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں. اس کو امام البغوی کی شرح السنہ میں روایت کیا. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، چاہے لوگ اس کو اچھی سمجھیں. آدمی جب بدعتی کو منع کیا جاتا ہے بدعت سے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا ہونے کے لیے کوئی برائی ہونا ضروری نہیں، اس کا نیا ہونا بھی برا ہے. سمجھ گئے؟ بدعت کا بدعت ہونا ہی برا ہے. ویسے جیسے ایک آدمی اپنی طرف سے 200 روپے کے نوٹ چھاپ کے لائے، اب آدمی کہے غلط ہے، اس میں برا کیا ہے، لوگوں کے کام آئے، اپنی طرف سے 300 روپے کے نوٹ چھاپ کے لائے، بولے اچھا ہے نا، گورنمنٹ نے 500 کی، 200 کی، 100 کی جو بھی نوٹیں چھاپی ہیں، میں اس کے ایکسٹرا اس کے علاوہ کاٹ رہا ہوں، لوگوں کو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی. چلے گا تو کوئی اتھارٹی دیا تو لوگوں کے فائدے کے لیے کیا میں نے، لوگوں کے فائدے کے لیے تو ہوتا. سمجھ جائے بات؟ یعنی ایک آدمی اچھی نیت سے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے چلتا، کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے، بہت غلط آدمی تھا، اس نے بہت مرڈر کیا تھا، تو بولا اتنا کورٹ کا کیس چلے گا، پولیس پکڑے گی اور ادھر سب کا ٹائم ویسٹ ہوگا، میں نے کام کیا مار ڈالا سر، ایک دم پولیس ٹرین میں جا کے پھانسی ہو جا رہی، اور وہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو میں نے کیا کیا، جج کا بھی ٹائم بچے گا، پولیس کا بھی بچے گا، وکیل کا بھی بچے گا، ہاں سارے ملک کا بچے گا، پبلک کا بچے گا، ان کی رشتے داروں کا، جس کا مرڈر ہوا اس کا رشتے داروں کا ٹائم بچے گا چکر کاٹنے میں. تو میں نے کام کیا، اس کو میں نے مار دیا. چلے گا؟ تیرے پاس اتھارٹی ہے؟ تو اچھی نیت سے کوئی کام اگر آدمی کرے وہ اچھا نہیں ہے، اس کام کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اور اس آدمی کے پاس اتھارٹی ہے اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی اضافہ کرنے کی، اتھارٹی ہم کو نہیں ہے، چاہے ہم کو اچھا لگے، ہم کو اختیار نہیں، ہم کو اختیار نہیں. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. تو کوئی بھی آدمی بدعت نکالتا کیا سمجھ کے نکالتا؟ چلو کچھ تو برا کام کرے گی، وہ اچھا کام کرنے کی نیت سے ہی کرتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں تجھ کو اچھا بھی لگے تب بھی وہ برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے وہ کام کیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ اچھا سمجھ کے کرے یا برا سمجھ کے کرے. برا سمجھ کے کرے تب بھی برا، اور اچھا سمجھ کے کرے تب بھی برا. کیوں؟ تو کیا تو نے کرنا نہیں چاہیے. نبی دین لے کر آتا ہے، نبی دین دے کر جاتا ہے، انبیاء دین لاتے ہیں اور انبیاء دین دیتے ہیں. لوگوں کا کام اس دین پر چلنا ہے، اس دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا نہیں. لہذا دین میں ہر بدعت گمراہی ہے. دنیا میں آپ کو کتنا بدعت کرنا، کرو نا. ٹیکنالوجی میں کوئی بدعت میں رکاوٹ ہے نہیں. آج جو ٹیکنالوجی آپ اچھی کرتے ہیں، دین میں نہیں، پچھلے آپ نے سمجھا رہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. نویں چیز، منقول علم کی بجائے مجرد معقولات میں مشغولیت. منقول اور معقول، یہ دو لفظ ہیں، ان کو سمجھ لیجیے. منقول اور معقول، یا آپ دیکھیں گے نقل اور عقل، اس پر سے ہے منقول، اس پر سے ہے معقول. نقل کا مطلب کیا ہے؟ نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی. نقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، کہا، صحابہ نے اس کو جو سنا اس کو کیا کیا، نقل کیا اور آگے بڑھایا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرا، تک وہ علم کیا ہوا، کاپی ہو گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے، ٹرانسفر ہوا. اس علم کو کہتے ہیں وہ علم جو منقول ہے. जिसको सहाबा ने सुना, देखा और अगली नस्ल को दिया। उन्होंने सुना और उसको याद रखा, अगली नस्ल को दिया। इसको कहते हैं ये नकल होता आया है, ठीक। और दूसरा क्या है? अकल। अकल के लिए पिछला कुछ जरूरत नहीं। आदमी बराबरी में बैठ के अकल से कुछ भी निकाल सकता है। अकल के लिए क्या है? मेरी अकल ने एक नया फलसफा गढ़ा, मेरी अकल ने एक नई चीज निकाली, तो मनकूल उसको कहते हैं। सलफ का तरीका इस बारे में क्या है, आइए देखते हैं। लई समय मन हाजी सलफ अल इहतिमाम बिल उलूम अल अक्लियत अल कहता انما علمهم قال الله قال رسول الله قال الصحابة। कहते हैं उन उलूम का एहतिमाम करना जो खालिस अक्ल पर मबनी हो, सलफ का मतलब नहीं है, बल्कि सलफ का इल्म قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال से है منقول नकल होना। तो सलफ का जो इल्म था वो मनकूल इल्म था कि अल्लाह ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा ने कहा, ये इल्म लेना ये इसको इल्म वो मानते थे। लेकिन मेरी अकल ने कहा, मेरे दिल ने कहा, तो ये सलफ का इल्म है। सलफ इस इल्म पर नहीं चलते थे, लिहाजा नकल की बजाय अक्ल वाले इल्म पर एतबार करना ये सलफ का तरीका नहीं। क्या इसका मतलब ये कि हमको अक्ल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अक्ल उस नकल के समझने में इस्तेमाल करना चाहिए। भाई मोटी मिसाल आपको, एक वकील है, वकील क्या करता है, काम किसी भी मुल्क में, चाहे इस्लामी मुल्क हो या गैर इस्लामी मुल्क, जो कानून की किताब है उस कानून की किताब को समझता है, समझाता है, उसकी बुनियाद पर कार्रवाइयां करता है, सही है? क्या बैठ के किताब लिखता कानून की और कानून की किताब में अपना कोई कानून डालता करता हो? नहीं कर सकता, अपनी तरफ से नहीं कर सकता, वो जज करता है, वकील नहीं करता है। लिहाजा यहां पर दीन के मामला में अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते हैं, ना उसको दीन बना के पेश कर सकते, ना अक्ल पर ऐसा एतमाद कर सकते हैं कि जिससे वाकई को दीन का बदल बन जाए। अकली उलूम पर एतमाद करना ये सलफ का तरीका नहीं है। जो मुजद्दद अक्ल पर मबनी हो, हाँ कुरान सुन्नत में जो बातें आई हैं उनको अक्ल से समझने की कोशिश करना, जाहिर बात है अक्ल से नहीं समझेंगे तो कहां से समझेंगे? अकल अल्लाह ने इसीलिए दी है, अफला ताकिलून, इसीलिए कहा कि तुम अकल से काम नहीं लेते, यानी अकल इस्तेमाल करो समझने के लिए। लेकिन अकल का इस्तेमाल आप दीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते या अकल को दलील नहीं बना सकते। आदमी अपनी अकल को दलील बना सकता है या नहीं? आप सोचिए, चलिए मानते अकल को दलील बनाना चाहिए, किसकी, दादा जान की या नाना जान की, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो रहा है, बाप की या बेटे, बीवी की या शौहर, बीवी की ज्यादा बाप को दिया। आप सोचिए, अकल सबको अल्लाह ने दी है, अब अकल की बुनियाद पर क्या हमेशा इत्तेबा होता है? नहीं। अकल की बुनियाद पर क्या होता है? इख्तलाफ। एक की अकल बोल रही ऐसा, एक की अकल बोल रही वैसा, तब अकल पे चलना चाहिए। तो सवाल ही पैदा हुआ किसकी? अपनी अपनी, ठीक है। ये डॉक्टर इधर से काट रहा, वो डॉक्टर उधर से काट रहा, ऑपरेशन चलेगा? महज अकल की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, कानून की बुनियाद, किसी भी मैदान में कानून की बुनियाद पर, कायदे की बुनियाद पर। दीन के मामला में कायदा है कुरान सुन्नत और सलफ का फहम, यह कायदा है। इसको छोड़ के अपनी अकल से कुछ भी आदमी दीन में अकीदा गढ़े, अपनी अकल से कोई भी अमल निकाले, इबादत निकाले, कबूल नहीं होगी। लिहाजा सलफ का तरीका नहीं है कि दीन के मामलात में अपनी अकल से कुछ कहे या अकल पर फैसलों की बुनियाद रखें। मिसाल के तौर पर आप देखिए जायदाद में अल्लाह ताला ने हक रखे हर एक। अब एक आदमी बढ़े मेरे हक में आ रहा नहीं, सबका सब इसको देना चाहिए, सही है। अकल की बुनियाद पर फैसले करेगा, मुसीबत में पड़ेगा। दस लोगों की अकलें अलग अलग हैं, दो भाई हैं, उनमें जायदाद का झगड़ा हो रहा है। एक भाई बोलता मेरी अकल से पूरा मुझको मिलना चाहिए, दूसरा भाई कहता मेरी अकल तो कहती है मुझको मिलना चाहिए, बताइए किसको देंगे। इंसान जिस चीज को कबूल करता है अपन मान रही इसलिए तो करता है, झगड़ा क्यों होता है, इसलिए कि हर एक की अकल अलग है। अगर अकल पर छोड़ देता अल्लाह ताला मामले को, दुनिया में झगड़े का सिलसिला शुरू होता है। जितने आदमी उतने दीन के वाहिद बन जाते, जितने लोग उतने दीन, क्यों, हर एक की अकल अलग है। अल्लाह ने लोगों की अकल पर नहीं छोड़ा बल्कि दीन दिया, और इसी को नकल होता आया, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल। मनकूल की पैरवी करना ये दीन है, महज माकूल नहीं, याद रखें इसको। आइए इस बारे में देखते क्या दलीलें। इब्न तैयम रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छी बात की करके हम आगे जाएंगे। इब्न तैयम फरमाते हैं अल इल्म قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان। कहते हैं कि इल्म क्या है, قال الله। इल्म क्या है, قال الله قال رسول। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान, रसूल ने फरमाया यानी हदीस, قال الصحابة सहाबा के आसार, हम उलुल इरफान ये लोग हैं जो मारिफत रखते हैं दीन की, बाकी दीन की मारिफत रखने वाले कौन हैं।